شیطانی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. لحظ سنده کسی سامنے ایک سوال دیا تھا کہ what are the black holes? How many dimensions are there? Are black holes gateways to other dimensions? Wherein black holes go, science کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک علیحدہ ایکسپلینیشن ہے جو کہ بہت سی جگہوں پر اس ایکسپلینیشن سے مطابقت رکھتی ہے جو ہمارا دین ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اس میں بھی دو تھیوریز دیتی ہے سائنس کہ جو سٹارز ایک ڈائمینشن میں سے یہ ہے کہ وہ سٹارز جن کا لائف سائیکل مکمل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پروردگار نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے ان سب کا ایک لائف سائیکل ہے, اپنے وقت پہ وجود میں آتی ہے اور پھر اپنے وقت پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, وہ اصل میں یہی ہے کہ اس کا لائف سائیکل ہر ایک چیز کا موجود ہے اور جب وہ لائف سائیکل کا اختتام ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ جس ستارے کا لائف سائیکل مکمل ہو جاتا ہے وہ ٹورڈز اس اینڈ اس کا مولیکولر سٹرکچر لوز ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا حجم بڑھنے لگتا ہے. تو جب حجم اس کا ایک حد سے آگے چلا جاتا ہے اور اس کے نیوکلس میں جہاں آئرن ہے وہاں تک اس کی ویوز پہنچتی ہیں تو ایک بڑا بلاسٹ ہوتا ہے. اس بلاسٹ کے نتیجے میں وہ ستارہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کے آسمان میں فضا میں بکھر جاتا ہے. یہ ایک اس کی ایکسپلینیشن دیتی ہے سائنس. دوسری تھیوری سائنس کی اس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ ایک بیلنس پر قائم ہے کہ اس کی گریویٹیشنل فورس اور اس کی ریڈیئیشن یہ دونوں ایکول ہوتی ہیں. تو جب ایکول ہوتی ہے تو وہ ستارہ فضا میں تیرتا رہتا ہے. جہاں اس کا انفلوئنس شروع ہوتا ہے اور یہ بیلنس آؤٹ ہونے لگتا ہے کہ گریویٹیشنل فورس بڑھتی ہے ریڈیئیشن کم ہوتی ہے تو وہ پھر ستارہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے نیوکلس میں درمیان میں بے پناہ قسم کی گریویٹیشنل فورس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو وہ اب سک کر لیتی ہے اپنے اندر. یہ سائنس کی ایک دوسری تھیوری ہے. چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا کبھی اس لیے اس کی ٹرمنالوجی تو میں یوز نہیں کر پاؤں گا, लेकिन थ्योरी का लुबे लुबाब ये है जो मैंने आपसे अर्ज किया। तो उसके दरमियानी हिस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाता है, जो हत्ता के रोशनी तक को खींच लेता अपने अंदर। जो इस्लाम कहता है इसके बारे में, बल्कि उससे पहले ये मैं अर्ज कर दूं कि जो साइंस ये कहती है कि ये जमीन एक अजीम धमाका बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई थी, वो भी यही थ्योरी, इसी थ्योरी पे बेस करके बात करते हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि रब ताला ने लफ्ज कुन कहा और जिसके नतीजे में 6 दिन और 6 रातों में ये कायनात वजूद में आ गई। साइंस उसको बिग बैंग कहती है। इस्लाम में इसकी थ्योरी एक डिफरेंट तरीके से बयान हुई है। जो साहब यहाँ पुराने तशरीफ लाने वाले हैं, हमने याद होगा कि जब हम दुआ का जिक्र कर रहे थे कि दुआ क्या है, कैसे कबूल होती है, तो उस ज़िम्न में एक अर्ज की थी आपकी खिदमत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि 7 आसमान हैं और उन आसमानों का दरमियानी फासला, 1 आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत पर कायम है। अब इसी बात को आप ब्लैक होल के उसमें चले जाइए कि आसमानों के दरमियान रब ताला ने रास्ते बनाए हैं। शायद सूरह अल मोमिनून में है कि हमने रास्ते कायम कर दिए। और ये साइंस इसको कंफर्म करती है कि इन सितारों से ब्लैक होल्स जिनको हम कहते हैं, वो खुद स्याह हैं लेकिन इसमें से रोशनी की, बिल्कुल सफ़ेद दूध या रोशनी की बीम निकलती है, जो साइंसदान कंफर्म करते हैं कि वो मौजूद है। तो दीन में हम ये कहते हैं कि वो असल में रास्ते हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया। अब उसमें कुरान पाक में एक सूरा है, सूरह तारिक। ये लफ्ज़ डिराइव हुआ तरीक से, और अरबी में तरीक रास्ते को कहते हैं। तो ये जो बीम्स हैं इसको हम दीन में ये कहते हैं कि ये एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने के रास्ते हैं। और दीन हमारा ये कहता है कि जो जिनको साइंस ब्लैक होल कहती है, ये असल में वो सितारे हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से उसमें सुराख हो गया हुआ है, जिसमें जो आर पार है सुराख। तो दीन के मुताबिक अरबी में ऐसा सितारा जिसमें आर पार सुराख हो वो साकिब कहलाता है। तो ये वो सितारे हैं जिनमें आर पार सुराख है और इससे रोशनी बेपना निकलती है और उसको हम रास्ता कहते हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान पर जाने का रास्ता है। अब वो सूरा का नाम मेरे जहन से इस वक्त महव हो गया। ये जो दवाइयाँ मैं खाता हूँ उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये शॉर्ट मेमोरी मेरी बिल्कुल ही बासकत ख़त्म हो जाती है कि कोई चीज़ याद नहीं रहती। उसमें रब ताला ने फरमाया कि हमने तबाक की तरह एक दूसरे के ऊपर 7 आसमान कायम कर दिए। तो ये 7 आसमान के बारे में जो एक हमारे साइंस का कॉन्सेप्ट था जो अब चेंज हो रहा है कि ये आसमान असल में हद निगाह है। तो जो जो हम ऊपर जाते जाते हैं तो आसमान का और हमारा फासला उसी नस्बत से बढ़ता रहता है और वो उतना ही फासला हमें दिखाई देता है जितना ही यहाँ से। लेकिन अब ये चेंज आ रही है, इसको साइंस तस्लीम करने लगी है कि आसमान का वजूद है। तो ये ब्लैक होल्स की असल हकीकत ये है। इसमें इसका ये इसकी दूसरी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जिस तरह मैंने साइंस की एक थ्योरी शुरू में अर्ज़ की कि उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर लूज होने लगता है क्योंकि वो लाइफ साइकिल अपना मुकम्मल कर चुका होता है। दूसरी थ्योरी इसके बरक्स है कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी उसकी स्ट्रेंथ होती है। आपने देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है इसमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते हैं कारों के, जहाज़ों के, जैसे कार में एक चीज़ होती है जिसे बॉल जॉइंट कहते हैं हम लोग, छोटा सा इतना सा पीस होता है। लेकिन उसकी डेंसिटी जो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो इतना क्लोजली नेट होता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को लोहे की स्ट्रेंथ से कई गुना बढ़ा देता है। तो उसका तरीका कार ये होता है कि लोहे का एक बड़ा लंप लेके बड़े साइज का, तो उसकी फोर्जिंग की जाती है। और फोर्जिंग करने का तरीका ये होता है कि वो हैमर होता है जिसकी कैपेसिटी 100 टन्स हो सकती है, 200 टन्स, 500 टन्स, हद तक 1000 टन भी होती है। तो वो उस पीस पर गिराया जाता है, इसको हम फ्री फोर्जिंग कहते हैं कि वो बराह रास उस लोहे से टकरा रहा होता है। तो वो लंप टूटता नहीं है बल्कि उस हैमर की, फोर्जिंग हैमर की प्रेशर की वजह से उसका साइज छोटा होने लगता है। हत्ता कि वैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 2 फीट बाय 2 फीट स्क्योर का वो लंप था लोहे का, तो उसकी फोर्जिंग कर करके उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 6 इंचेस बाय 6 इंचेस में, उसको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई, उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इतना क्लोजली निट हो गया है कि उसके अंदर कहीं गैप नहीं है। उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत शिद्दत के साथ पैवस्त हो जाते हैं। वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसमें से जब ये बॉल जॉइंट बनता है तो गाड़ी का व्हील उसी के ऊपर रोटेट कर रहा होता है। तो गड़ों में भी व्हील लगता है और खासी स्पीड पे लगता है, तो जो इम्पैक्ट है उसका वो कई डजन्स ऑफ टन्स के बराबर हो जाएगा उसका, तो उसको वो सह लेता आराम से, टूटता नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी डेंसिटी। तो इसी तरह ये जो ब्लैक होल है, इसका जो अंदर का इनर पार्ट है उसका, वो ब्लैक होता है, जेट ब्लैक, और उसके अंदर डेंसिटी उसकी इसी तरह होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेंसिटी वहां मौजूद है, और डेंसिटी ज्यादा हो जाने की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चीजों को अपने तरफ खींच लेती है, उसको हम कहते हैं उसे सक कर लिया उसे। और ब्लैक होल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर हम उस ब्लैक होल को देखें तो उससे थोड़े फासले पर हमें वाइट दूध या रोशनी की बीम्स निकलती हुई दिखाई देंगी, ये उसकी पहचान है। और इसी तरह इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से बाज़ुकात कई की गैलेक्सीज इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं, उसका ऑर्बिट वो बन जाता है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो आपको जो प्रॉपर पावर की दूरबीन है उसके जरिए से दिखाई दे जाती है, ये इसकी असल हकीकत है ब्लैक होल की, और कुछ नहीं है। साइंस इस पर जोर इसलिए दे रही है कि वो जो दीन कहता है कि जमीन वजूद में आई नहीं, वजूद में लाई गई थी, बल्कि यूं कहिए कायनात वजूद में आई नहीं है, ये वजूद में लाई गई थी, तो रब ताला के हुक्म से ये वजूद में आई। ये एक फर्क है दोनों की थ्योरी में। साइंस का कहना यह है कि बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आ गई, दीन ये कहता है कि वजूद में आई नहीं बल्कि वजूद में लाई गई है, रब ने इसे तख्लीक किया है। ये तो गालिबन इनके पहले तीन सवाल के तो शायद जवाब मैं दे गया था, चौथा था, चौथा इनका सवाल है व्हाट इज इस्लाम। अब ये डिपेंड करता है कि इसका सवाल का जवाब देने वाला किस मजहब से ताल्लुक रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, तो मैं तो इसका जवाब अपने ही अकीदे के मुताबिक दूंगा कि हम दुनियावी जुबान में अगर बात करें तो जिस तरह हम ये कहते हैं कि कोई मुल्क बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के रन नहीं किया जा सकता, कोई कौम कौम नहीं रह सकती बगैर एक कॉन्स्टिट्यूशन के, बिखर जाएगी, इसी तरह हमारा कहना यह है दुनियावी जुबान में कि इस्लाम दर हकीकत एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो रब ने अता किया इंसान को, कि रब को मानने वाले लोग अपनी जिंदगी को किस ढब से गुजारे। एक मुसलमान का, रब को मानने वाले का, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले का तर्ज जिंदगी क्या होना चाहिए, तो इस्लाम में अगर हम गहरी नजर से कभी मुताला करें तो बारीक से बारीक बात का जिसका वास्ता हमारी जिंदगी से पड़ सकता है उसको बयान किया गया है कि उसको कैसे किया जाए। तो ये एक तर्ज जिंदगी है इस्लाम जो रब चाहता है कि उसको मानने वाले अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें। इनसे अगला इनका सवाल ये है कि वाई लव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सो इम्पॉर्टेंट इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम। ह्यूमन नेचर में है कि इंसान सिर्फ दो ही सूरतों में किसी दूसरे आदमी की बात मानता है, उसके कहे पर अमल करता है। एक सजा का खौफ, या आसान लफ्जों में कहें कि दूसरे आदमी की न्यूसेंस वैल्यू, उसकी न्यूसेंस वैल्यू से डर के इंसान उसकी बात को मानेगा, या फिर मोहब्बत। जिस आदमी के खौफ से, उसकी ताकत से, उसके इंतकाम से, उसकी जहनी शरारत से डर के हम उसकी बात मानते हैं, तो हमारे दिल में एक बगावत का जज्बा भी रहता है। उसके अहकामात से बच निकलने का जज्बा भी कायम रहता है। जहां कहीं मौका मिलता है हम उसे उसके अहकामात को डॉज कर जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी की मोहब्बत में उसकी बात मानते हैं तो उसमें न सिर्फ ये कि हम बच निकलने के तरीके नहीं ढूंढते, बल्कि ये शौक होता है कि वो हमसे कोई बात कहे और हम उसको माने। और जब हम ऐसा आदमी जिससे हम प्यार करते हैं उसकी किसी बात को मानते हैं तो वो इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट में मानते हैं, उसकी जुजियात पर भी अमल करते हैं। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रब ताला का जो पैगाम हम तक पहुंचा जिसे हम दीन इस्लाम कहते हैं, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी तमाम बातों को तस्लीम भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। तो इसलिए हमारे यहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें तो नतीजे में रब आपसे प्यार करने लगेगा। उसके पीछे यही वजह है कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दीन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जो वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल ना हुई हो, अलबत्ता कुछ ऐसी बातें हैं जो वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल तो हुई लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं बनी, तो उसको हम हदीस कुदसी कह देते हैं। इसी तरह कुछ फरमुदात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हैं जो आपने रिपीटेडली फरमाए हैं मुख्तलिफ मौकों पर, वही फरमुदात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको हम हदीस मतवातर कहते हैं। कुछ तवातर से बयान की गई है बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर, जब हम प्यार करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई हर बात को हम न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उस पर इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट हम उस पर अमल करते हैं, तो दर हकीकत हम रब की इताअत कर रहे होते हैं। तो जब हम रब की इताअत करते हैं तो रब हमसे प्यार करता है, रब की कुर्बत हमें हासिल हो जाती है। तो इस वजह से हम इस बात पे जोर देते हैं कि अगर रब तक पहुंचना है तो हमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना होगा। इनका छठा सवाल है कि व्हाई प्रेइंग फाइव टाइम्स इज इम्पॉर्टेंट। इस सिलसिले में एक गुजारिश है कि इस पर एक लेक्चर था काफी तफसीली गुफ्तगु हुई थी, वो किसी न किसी किताब में छप चुकी होगी। तो इस सिलसिले में अगर टीपू साहब या साविर साहब से रब्ता कर लें तो वो आपको गाइड कर देंगे कि वो किस किताब में है और वो जो गुफ्तगु की नशिस्त है उसका नंबर क्या है। तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो रेपिटेशन से हम बच जाएंगे। सातवां सवाल इनका ये है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम प्रेयर्स फॉर आवर डेली लाइफ। बड़ी सिंपल चीज है कि जो बुनियादी जो अव्वलीन जिस पे पुछगिछ होगी वो नमाज की इबादत है। तो अगर हम नमाज ही को ले लें, तो आप अगर वजू की तरफ चले जाएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी हमारे कि जो हम कोहनियों तक वजू में अपने बाजू धोते हैं और उसके बाद जब हम मसा करने के लिए पानी बहाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में डॉक्टर्स किसी भी मरीज को चेक करने से पहले या ग्लव्स पहनने से पहले वो कोहनियों तक पानी बहाते हैं। कभी आप किसी डॉक्टर से पूछें कि ये क्यों करते हैं, हाथ तो इसको लगाते नहीं आप, सर पानी बहाते हैं कोहनियों तक, तो आपको इसका जवाब देगा कि ये जर्म्स और बैक्टीरिया इस पानी से बह जाते हैं और बाजू ये हमारे साफ हो जाते हैं। इसी तरह ग्लव्स जो हैं वो एक हाथ में तो ग्लव्स अपने हाथ से पहन लेगा सर्जन, दूसरे हाथ में ग्लव्स कभी नहीं पहनेगा, वो दूसरे से कहेगा कि इसको पहना दें जो लोग कॉन्शियस हैं हाइजीन के बारे में, इसलिए कि उसके बाजू इससे मसा के अंदाज में पानी बहाने से साफ हो चुके हैं। तो ग्लव्स को एक हाथ से पकड़ा है उसने, उस पर अगर कोई बैक्टीरिया है तो ये ना हो कि जो दूसरा हाथ से ग्लव्स जो पहन रहा हो तो उस पर बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाए। तो नमाज की इब्तदा वजू से हम करते हैं, तो वजू के सिलसिले में ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। जब वजू पर बात हो रही थी यहाँ तो उस वक्त शायद मैं ये कहना भूल गया था कि ये मैं मसा का बता देता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी। हम अपने जिस्म को वो हिस्से जो एक्सपोज्ड हैं एक्टिविटी के लिए, जैसे हाथ हैं, ये फोर आर्म्स हैं हमारे, फेस है, पांव है, ये एक्सपोज्ड हैं। इसको हम पांच वक्त जरासीम से पाक रखते हैं। नतीजा ये है कि हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें तो वो एक बात पे बहुत जोर देंगे डर्मेटोलॉजिस्ट, कि अपने फेस को सादा पानी से धोते रहिए, दिन में कई बार धो लें उसे, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। आंखों की ताजगी के लिए किसी एक चीज को भी देखेंगे तो पता ही चलेगा कि अब आज की जो साइंस है वो उसको तस्लीम करती है कि इसके फवाइद क्या है। वजू के नमाज में जो हम सीखते हैं वो डिसिप्लिन, पहली बात तो है कि डिसिप्लिन, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, जो तीन वो चीज़ें जो हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है, वो इस नमाज से हम सीखते हैं। एक मकर्रा वक्त पर हमने नमाज पढ़नी है और पांच वक्त की पूरी नमाज हमने पढ़नी है, तो इसमें रेगुलरिटी भी है और पंक्चुअलिटी भी है, इसके आदि हो जाते हैं हम। फिर हम सफ में कदम से कदम मिलाकर खड़े होते हैं और इमाम साहब की एक कमांड पर हम रुकू में चले जाएंगे, सजदे में चले जाएंगे, सजदे से उठ खड़े होंगे। हम अपनी मर्जी नहीं इस्तेमाल कर पाते उसमें, तो ये डिसिप्लिन आता है। इसके साथ एक इजाफी चीज जो हम सीखते हैं वो दूसरे को अकोमोडेट करने की बात है, कि कोई भी नमाजी आ गए सब में, बजाहिर जगह नहीं है, तो हम सब अपने आप को स्क्वीज कर लेंगे और उस नमाजी, बाद में आने वाली नमाजी के लिए जगह पैदा कर देंगे। तो दूसरे के लिए हमें अपने आप को तंग करके भी उसे अकोमोडेट करने की आदत ही हमारे अंदर पैदा होती है। तो ये तो एक इबादत की बात है। इसी तरह आप रोजे पर चले जाएं, बेतहाशा किताबों में इसके फायदे इस तरह के मौजूद हैं, हज है, ज़कात है इस पर। तो ये नमाजें जितनी इबादात हैं तो वो अल्लाह के लिए, लेकिन इंसान को खुद उसके फवायद बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनका आठवां सवाल, Why can't I live? I just live as I like. अगर हर आदमी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा तो एक अनार्की पैदा हो जाएगी, कि मैं आजाद हूं अपनी मर्जी एक्सरसाइज करने की। आप आजाद हैं अपनी मर्जी एक्सरसाइज करने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा। जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, तो कैओटिक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। ये साहब गालिबन मुल्क से बाहर कहीं किसी मगरबी मुल्क में रहते हैं, ये मेरा अंदाजा है। तो वहां ये सही है कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां दूसरे आदमी की नाक शुरू हो जाती है। तो वहां दुनियावी कवानीन आपके पड़ोसियों کہ حق بھی آپ سے چھین کر انہیں دلواتے ہیں، اس طرح سے کہ آپ ویک ڈیز میں رات 10 بجے کے بعد ٹی وی بلند آواز سے اپنے گھر کے اندر چلا نہیں سکتے کہ اس کی آواز پڑوسی کے گھر میں جائے گی، وہ بے آرام ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں ویک ڈیز میں 10 بجے کے بعد کسی قسم کی کوئی گیدرنگ نہیں کر سکتے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ آپ کے گھر کا کوڑا کرکٹ ذرا سا بھی کاغذ کا پرزا دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتا، اس کو حق ہے کہ پولیس کو کال کر لے۔ یہ سب ہماری زندگی کو گورن کرتے ہیں، ہمیں ہماری حدود میں رکھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب سے اپنے دین کا پیغام دینا شروع کیا، تمام ڈیوائن ریلیجنز میں اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ ہماری کسی حرکت سے دوسرے آدمی کو دکھ نہ پہنچنے پائے، ہمیں ایک حدود میں رکھا جائے تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ آزادی سے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ تو وہ حدود مقرر کی ہیں سوسائٹی کو کیاوس سے بچانے کے لیے۔ اگر ان حدود کے اندر ہم رہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مجھے حق ہے کہ میں جیسا چاہوں لباس پہن لوں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ستر پوشی کر رہا ہو میری۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہوں میں کھا لوں، لیکن حلال اور حرام کی حدود مقرر کر دی رب تعالیٰ نے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے وسائل کما لوں، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی حدود یہ مقرر کر دی کہ حلال راستوں سے کماؤ۔ تو یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اپنی مرضی کی زندگی گزار لے، لیکن اس پابندی کے ساتھ کہ ہماری مرضی دوسرے کی مرضی سے ٹکراؤ نہ رکھے۔ نائنتھ کوسچن ان کا یہ ہے کہ ان اسکول we are taught that science is based on evidence and religion is based on things which were inexplainable at times and people gave certain meaning to these depending on culture, politics, fears, desires, etc., etc. How can we have more faith and ward off the argument presented? ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ اس میں شک نہیں کہ سائنس بیسڈ ہے ایویڈنس پر، لیکن اس کا کیا کیجئے کہ ہماری ایویڈنس ایک زمانے میں یہ کہہ رہی تھی کہ زمین چپٹی ہے، پھر ایک نئی تھیوری آ گئی بیسڈ آن ایویڈنس کہ ہماری زمین گول ہے۔ وہ بھی ڈسکارڈ ہو گئی اور ایک نئی تھیوری آ گئی کہ زمین سیب کی طرح گول ہے، کہ پولز پر پچکی ہوئی ہے اور باقی گول۔ اب یہ تھیوری چل رہی ہے۔ ایک زمانے میں تھیوری یہ تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، based on evidence. वो थ्योरी खत्म हो गई और एक नई थ्योरी आई कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है. दैट वॉज अगेन बेस्ड ऑन एविडेंस. अब लेटेस्ट थ्योरी जो हम पिछले 100-150 साल से फॉलो कर रहे हैं कि ये सब प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं. ये भी बेस्ड ऑन एविडेंस है. तो वो एविडेंस जो इतनी फ्लूइड है कि हर 100-200 साल के बाद वो चेंज हो जाएगी, उसका क्या हम करेंगे? असल में किस्सा यह है कि साइंस ये सही है कि वो बेस्ड ऑन एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस जिस पे बेस करके साइंस की थ्योरीज जन्म लेती हैं उस एविडेंस को देखने वाली आंख की रसाई उसके इल्म के साथ साथ तब्दील होती चली जाती है. अकल जब जो जो हासिल होती है उसे मजीद, या जो जो इल्म बढ़ता है उस शख्स का, तो उसका विजन ब्रॉड होता चला जाता है, दूर तक देखता है. इसके बरक्स आप भी मुसलमान हैं, ज्यादा दूर ना जाइए, कुरान को उठा के देख लीजिए. 1400 साल पहले जबकि साइंस का कोई ऐसा वजूद नहीं था, उस वक्त भी रब ताला ने कुरान में कह दिया कि इनके रास्ते मुकर्रर कर दिए, ये अपने रास्तों से नहीं हटते. बड़ी सिंपल बात, वो चेंज नहीं हो रहा. बादलों के बारे में कह दिया, अभी थोड़ी देर पहले आसमानों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 1400 साल पहले 7 आसमानों का कॉन्सेप्ट, और फिर उनके दरमियान कितना फासला है और एक दूसरे के ऊपर तबाक की सूरत में प्लेस्ड हैं. उस वक्त तो ये साइंस मौजूद नहीं थी. वो तब्दील नहीं होता, न सिर्फ ये कि तब्दील नहीं होता, बल्कि इंसान का जो जो इल्म आगे बढ़ता है तू वो चीज कंफर्म होती चली जाती है कि जो 1400 साल पहले किताब में लिख दी गई थी वो दुरुस्त थी, हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत थे. मैं साइंस को नेगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं आपसे कि इंसानी इल्म भी नामुकम्मल है. मैं नाकिस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता. इंसानी अक्ल भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, इल्म के साथ साथ बढ़ती जाती है. तो ऐसी चीज जो मुकम्मल नहीं है, ये बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल मैंने कहीं 2-4 दिन पहले ही दी थी कि रब ताला के भेजे हुए जितने भी पैगंबर रसूल हैं, नबी हैं, वो दुनियावी तौर पर उम्मी होते हैं. उन्होंने किसी दुनियावी स्कूल से एजुकेशन नहीं हासिल की होती है, जबकि रब जोर देता है इल्म पर. कुरान में उसने कह दिया कि इल्म वाला और बे इल्म कभी एक बराबर नहीं हो सकते. اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ علم کی ویلیو کیا ہے. لیکن اس کے اپنے پیغمبر رسول نبی دنیاوی تعلیم سے بے بہرا ہوتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کسی دنیاوی ٹیچر سے اگر وہ حاصل کریں گے تو ٹیچر خواہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں, قابل احترام ہیں وہ ہر حال میں, لیکن کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں ان کا علم بھی نامکمل ہوگا, ان کی دی ہوا جو دیوی تعلیم ہے وہ بھی ناقص ہوگی, فالٹی ہوگی. تو پیغمبر اگر پیغمبر کے علم کی بنیاد وہ دنیاوی تعلیم ہوگی تو اس کی زبان سے اگر کبھی کوئی غلط بات نکلتی ہے تو وہ پوری اس کے قوم کی لیے دلیل ہوگی کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا تھا. تو اس لیے رب اپنے پیغمبروں کو خود تعلیم دیتا ہے کہ اس میں کہیں فالٹ نہ رہ جائے. تو اسی طرح جو قرآن میں کہہ دیا گیا, کتاب میں کہہ دیا گیا, وہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ درست وہی ہے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.